ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शिविर का चौथा दिन है। कल रात में 7 वंडर्स ऑफ द इनर वर्ल्ड देखे थे और आज 8 पावर्स देखेंगे कि राजयोग से हम कैसे जो हमारे अंदर पावर्स हैं उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उसमें भी विशेष 8 पावर्स। यूं तो बहुत होते हैं। आज 2 दिन पहले हमने गणेश चतुर्थी मनाई, उसके बाद थोड़े दिन में हम क्या मनाएंगे, नवरात्रि, जिस नवरात्रि में अष्टभुजाधारी शिव शक्तियों की पूजा की जाती है जो प्रतीक है राजयोग द्वारा प्राप्त अष्ट शक्तियों का। तो ऐसे विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में पधारी हैं हमारी आदरणीय राजयोगिनी सुमन दीदी जी। करतल ध्वनि से हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपको बाल्यकाल से ही आध्यात्मिकता में रुचि रही, घर में भी माता पिता चूंकि इस मार्ग पर थे तो बहुत सहज था इस मार्ग में चलना। और फिर आपने जब 1992 में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बेंगलोर यूनिवर्सिटी से, उसके बाद अपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। तो 93 से आप हेडक्वार्टर में रह रहे हैं। विशेष रूप से आपका रहना ज्ञान सरोवर में होता है। तो 93 से आज दिन तक करीब 30 वर्ष कह सकते हैं हम, 25 से ज्यादा हो गए हैं आपको यहाँ रहते हुए। और आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत डिफरेंट कोर्सेस हैं हमारे, जैसे सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, लिविंग वैल्यूज, ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस जो है आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूशंस में, इंडस्ट्रीज में इनविटेशन मिलने पर जाते हैं और ये कोर्सेज कराते हैं। इतना ही नहीं, आपने कई सारी रैलीज, यूथ रैली, कार रैली, एनवायरमेंट रैली, इनमें भी पार्टिसिपेट भी किया है, तो ऑर्गेनाइज करने में भी मदद की है। हेडक्वार्टर में भी नेशनल इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसेस चलती है उसमें भी आप स्पीकर के रूप में अपना रोल प्ले करती है। आपने देश विदेश में बहुत ट्रैवलिंग की है, विदेश में भी आप बहुत जाते रहते हैं और आपका जो अपना इस ज्ञान को समझने के बाद जो आपकी ज्ञान की गहराई है, जो लाभ अनुभव है, उनसे आप सबको परिचित कराते रहते हैं। आप हिंदी और इंग्लिश और कन्नड़ में फ्लुएंटली बोल पाते हैं और वर्तमान में आप एजुकेशन विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। ज्ञान सरोवर में रहते हुए ज्ञान सरोवर में जो भी गतिविधियां चलती है उसको सक्रिय रूप में चलने में अपना पूरा पूरा योगदान देते हैं। बहुत प्रतिभा से संपन्न हमारी सुमन बहन अभी हमारे बीच में रखने जाएगी कि राजयोग से हम आंतरिक शक्तियों को कैसे अनुभव करें। आदरणीय सुमन दीदी जी।
ओम शांति। तीन दिन से मेडिटेशन सीख रहे हैं, करना आ गया, कॉन्फिडेंट? तो मेडिटेशन क्यों करना चाहते हैं? क्यों सीखने आए हैं? अपने मन को, अपने आप को जानने की, क्यों जानना है? जानने से कुछ फायदा है, औरों को जान पाएंगे। और किस लिए मेडिटेशन करना चाहते हैं? सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट, और आत्मा के जो दाग है उसको मिटाने के लिए। एम्पावरमेंट में आ गया, और किस लिए? परमात्मा के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? शक्तिशाली बनने के लिए, राइट? तो हम सभी, मतलब कोई भी है इस संसार में, सभी लोग सुख शांति चाहते हैं। कोई भी दुखी नहीं रहना चाहते हैं, कोई भी अशांत नहीं रहना चाहते हैं। तो अलग अलग तरीके से अपना वो ढूंढते हैं, लेकिन मेडिटेशन ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम स्थायी सुख और शांति की अनुभूति हम कर सकते हैं। स्थायी सुख और शांति कैसे अनुभव करें? क्योंकि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो चलो मन की शांति मिल जाती है थोड़े समय के लिए, लेकिन वो 24 घंटे रहे वो कैसे संभव है? कैसे संभव है? कर्मयोगी बनकर, अटेंशन रखकर, मतलब सुख और शांति जो है वो शक्तियों का बाय प्रोडक्ट है। अगर सहन करने की शक्ति नहीं है तो सुखी रह सकते हैं? सामना करने की शक्ति नहीं है तो सुखी रह सकते हैं? निर्णय करने की शक्ति नहीं है तो सुखी रह सकते हैं? संयोग की शक्ति नहीं है तो सुखी रह सकते हैं? नहीं। तो इन सभी शक्तियों का बाय प्रोडक्ट है सुख और शांति। अगर हम अपने जीवन में शांति की अनुभूति करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? इन शक्तियों की अनुभूति करनी पड़ेगी। मेडिटेशन के द्वारा कहा ना कि सेल्फ एम्पावरमेंट होगा, शक्तियों की अनुभूति होगी, लेकिन वो शक्तियां कौन कौन सी है? शक्तियों की बात जब हम करते हैं तो कौन सी शक्ति है? केवल विल पावर की बात नहीं है, केवल दृढ़ता की शक्ति की बात नहीं है, अष्ट शक्तियों की बात है। देवियों को पूछते हैं तो देवियों को अष्टभुजाधारी दिखाते हैं ना, तो एक एक भुजा में एक एक शस्त्र दिखाते हैं। शस्त्र और भुजा किसका प्रतीक है? शक्तियों का प्रतीक है। इन शस्त्रों का प्रयोग किस लिए किया जाता? असुर संहार के लिए किया जाता। तो असुर कौन है? कोई है इस दुनिया में कोई बड़े बड़े विकराल रूप के जो शरीर लेकर के कोई है ऐसे? अपने ही अंदर छिपे हुए जो नेगेटिविटी है, विकार है, व्यर्थ है, तो वही असुर है। तो उनको संहार करने की जरूरत है, दूसरों के असुरों को नहीं। दूसरों के अंदर अगर नेगेटिविटी है, दूसरों के अंदर कुछ है, तो उसके लिए हम जवाबदार नहीं है। हम अपने अंदर जो छुपे हुए विकार है, असुर है, उसके लिए हम जवाबदार हैं। तो उसको हमें संहार करने की जरूरत है। तो संहार करने का तरीका है ये शस्त्र। और देवियों को क्या कहते हैं? वो शिव की शक्तियां कहते हैं, शिव की पुत्रियां कहते हैं, शिव के संतान कहते हैं। तो आप सभी कौन है? शिव शक्तियाँ, केवल बहनें शिव शक्ति हैं, भाई भाई भी शिव शक्ति हैं, क्योंकि आत्मा है ना, तो आत्मा शिव बाबा के संतान है, परमात्मा के संतान है, शिव के पुत्री या पुत्र है, तो फिर वर्षे के रूप में ये सभी शक्तियां हमें मिल जाता है। जैसे हम परमात्मा को अपने पिता मानते हैं, वर्षे के रूप में इन शक्तियों को हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन यूज क्यों नहीं कर पाते, यूज क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि याद नहीं रहता, स्मृति नहीं रहती, या पता नहीं होता कि ये शक्तियां मेरे पास है, ये पता नहीं है, है ना। तो इसलिए आज हम पता करते हैं ये अष्ट शक्तियां कौन कौन सी है, है ना। तो इस चित्र में पूरे अष्ट शक्तियां दिखाए हैं, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहली शक्ति है पावर टू विड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। इस चित्र में कछुए को देख रहे हैं, कछुए की विशेषता क्या है, जब चाहे तब अपने कर्मेंद्रियों को अंदर विड्रॉ कर सकता है, है ना। जब भी उसको डर लगता है तब वो विड्रॉ कर लेता है, क्यों, क्योंकि वहां सुरक्षित महसूस करता है, उसका जो ऊपर का शेल है वो बहुत हार्ड है, इसीलिए जब अंदर चला जाता है वो सुरक्षित महसूस करता है। वहां ऊपर कोई भी कूदे, कोई भी कुछ पत्थर फेंके, कुछ भी करे, उसको कुछ नहीं होता, है ना। तो ऐसे ही हमारे पास ऐसे सुरक्षित जगह कौन सा है, जब भी कुछ ऐसे डर लगे या असुरक्षित महसूस करे तब वहां हम विड्रॉ करके बैठ सकते हैं, वो ऐसी कौन सी जगह है, बाबा की याद, और कौन सी, बाबा को याद करने के लिए भी क्या चाहिए, जब परिस्थितियां होती है, समस्याएं सामने होती है, तो फिर भगवान को याद कर सकते हैं, साक्षी अवस्था, आत्मिक स्थिति का अनुभव करना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक हम, हमारा कनेक्शन जुड़ता नहीं है ना। अगर कनेक्शन जोड़ना है तो पहला स्टेप है मेडिटेशन का, क्या है, आत्मा समझना, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना, आत्मिक स्थिति का अनुभव करना, है ना। कर्म में आते 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 तो हम इतने कर्म में इन्वॉल्व हो गए हैं तो देह भान हमारा नेचुरल हो गया है, तो अभी फिर कर्मेंद्रियों को विड्रॉ करके बार बार ये अनुभव करने की जरूरत है कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि संसार में 98 या 100% जो समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसका जड़ है देह अभिमान, देह भान के कारण से समस्याएं उत्पन्न होती है। तो अगर हमको अपने जीवन के समस्याओं का समाधान करना है तो एक ही माध्यम है, वो है आत्मिक स्थिति, अपने आप को बार 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 आत्मा समझना, वहां वो शक्ति है, आत्मिक स्थिति में स्थित होने में वो शक्ति की अनुभूति हम कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा के अंदर वो सब शक्तियां हैं। मेडिटेशन करने के लिए तो ये चाहिए ही, लेकिन कर्म करने के लिए भी एक फाउंडेशन है कि आत्मिक स्थिति। हम यहाँ कहते हैं ना, मेडिटेशन करने के लिए, आध्यात्मिकता को फॉलो करने के लिए आपको घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर में रहते हुए सभी संबंधों को निभाते हुए परमात्मा को याद करना है। तो मेडिटेशन से क्या होता कि उन संबंधों को भी हम अच्छी रीति निभा पाते हैं। कैसे, जब हम एक प्रॉब्लम लेकर के चलते हैं तो उसका जो प्रॉब्लम है उसका असर है दूसरे संबंधों में भी पड़ता है कि नहीं पड़ता है तो क्यों ऐसा पड़ता है? क्योंकि हम स्थिति में स्थित होकर के कर्म नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई ना कोई एक संबंध को लेकर के वो अटैचमेंट हुआ होता है। फिर मान लीजिए दिन भर में इतने सारे लोगों के साथ मेरा संबंध है तो हर एक का रोल अलग अलग है ना। अगर एक महिला है वो कॉलेज में टीचर, अगर वो टीचिंग कर रही है तो वो एक टीचर भी है, माँ भी है, पुत्री भी है, बहू भी है, कोलीग भी है, सबॉर्डिनेट भी है ना। तो अलग अलग लोगों के साथ उसका अलग अलग संबंध है, लेकिन उस व्यक्ति को एक संबंध के साथ अगर अटैचमेंट है। अक्सर करके किस संबंध के साथ अटैचमेंट ज्यादा हो जाता है? बच्चों के साथ, है ना। माँ के रोल का कॉन्शियसनेस इतना ज्यादा होने के कारण से बच्चों के साथ जब अटैचमेंट ज्यादा है तो क्या होगा? अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए हम कहते हैं, वो क्यों नहीं रहना चाहिए? क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि वो एक संबंध के साथ अटैचमेंट होने के कारण से जो आपका अलग अलग दूसरे जो कर्तव्य है ना, वो आप निग्लेक्ट कर लेते हैं। दिन भर में अगर वो महिला कॉलेज में जाकर के पढ़ा भी रही है लेकिन दिन भर में बुद्धि में किसको याद कर रही है? बच्चों को। वो भोजन किया कि नहीं किया, ये किया नहीं किया, वो ये, मतलब 24 घंटों में से मेजॉरिटी वो किसको याद करती है? अपने बच्चों को। माने जिसको भी हम याद करते हैं उनके प्रति हम शक्तियां दे रहे हैं। अगर एक संबंध के प्रति इतनी ज्यादा शक्तियां हम खर्च कर रहे हैं तो दूसरे संबंध तो सफर होंगे ना। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं करो, लेकिन यथार्थ रूप में रह करके फिर हम कर्म करते हैं तो सभी को हम इक्वली वो एनर्जी दे सकते हैं, हमारे संबंध वो ठीक रह सकते हैं। मैं टीचर हूं, माँ हूं, पत्नी हूं, तो इसके बजाय क्या सोचना है? टीचर नहीं है वो, माँ नहीं है, माँ तो है ही लेकिन दो बच्चों की माँ है ना, सारी दुनिया की तो माँ नहीं है। तो इसलिए इस स्थिति में स्थित होकर के मैं आत्मा हूं, माँ का रोल निभा रही हूं, माँ नहीं हूं लेकिन वो केवल एक मेरा रोल है ना, वो भी एक दो लोगों के साथ मेरा रोल है वो, है ना। तो वो रोल कॉन्शियसनेस में आने की जरूरत है। मैं माँ नहीं हूं लेकिन माँ का रोल निभा रही हूं। ये स्मृति बार बार आए कि मैं आत्मा हूं, माँ का रोल निभा रही हूं, मैं आत्मा हूं, टीचर का रोल निभा रही हूं, मैं आत्मा हूं, पत्नी का रोल निभा रही हूं। तो जब सेंटर में स्थित होकर के फिर जब हम कर्म करते हैं तो वो फिर हमारी एनर्जी उसमें फ्लो होता है। जब ऐसे एनर्जी जब फ्लो होगा तो वो संबंध सुखदायी रहेगा। वहां अटैचमेंट नहीं लेकिन वहां स्नेह जरूर रहेगा, क्योंकि यथार्थ रीति से कनेक्शन दे रहे हैं, कनेक्शन जोड़ रहे हैं। तो ये है कर्मयोग, ये है मेडिटेशन। मेडिटेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है या बहुत मुश्किल बात नहीं है। कर्म करते समय भी बार 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 ये स्मृति लाना, मैं कौन हूं, फिर कर्म में आना। इसलिए शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेडिटेशन करते समय या फिर कर्म करते समय, पावर टू विथड्रॉ। और दूसरी शक्ति है पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। इस चित्र में क्या देख रहे हैं? एक ट्रैवलर अपना सूटकेस लेके जा रहे हैं। जीवन भी एक यात्रा है, आप भी स्थूल जीवन के यात्रा तो के यात्री तो है ही, लेकिन साथ साथ बॉम्बे से यहाँ आए हैं, यात्रा करके आए हैं ना, तो आपका सूटकेस, एक सूटकेस है, दो सूटकेस है, कितना सूटकेस लेके आए? एक ही सूटकेस है, क्यों? थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं लेके आ सकते थे? ज्यादा कपड़ा, ज्यादा सामान नहीं ले आ सकते थे? बोझा कम करना है, लगेज कम रखना है, क्यों? सफर अच्छा होगा तो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा कि ज्यादा लगेज रहेगा तो उठाना पड़े, कूली कर लेते थे ना? हमेशा कहते हैं ना ट्रैवल लाइट, जितना कम लगेज उतना आपकी जो यात्रा है वो सुखद रहेगा, राइट? चाहे वो ट्रेन में, चाहे वो फ्लाइट, फ्लाइट में तो लिमिट होता है, ट्रेन में तो लिमिट नहीं रहता, लेकिन वो उस यात्रा में हम थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं। जब आप सूटकेस बना रहे थे, सूटकेस में सामान भर रहे थे, तो बहुत ही आवश्यक चीजों को सूटकेस में डाला आपने, आपको लगा कि जिस चीज के बिना हम चार दिन रह सकते हैं उन सभी चीजों को छोड़ दिया, जो बहुत ही आवश्यक चीजें थी चार दिन के लिए, उन्हीं चीजों को आपने सूटकेस में डाला। उस यात्रा के लिए हम अटेंशन रखते हैं, लेकिन जीवन रूपी यात्रा के लिए आपका लगेज कैसा है? जीवन रूपी यात्रा में आपका लगेज यहां कैसा है? कितना सूटकेस है यहां? कितना सूटकेस है? वेरी हैवी। क्यों? उस पे तो ध्यान रखा, लेकिन इस पे कौन सा एक्स्ट्रा लगेज है यहां? कौन सा एक्स्ट्रा लगेज है? विकार तो विकार है ही, लेकिन यहां वेस्ट है। वेस्ट अनावश्यक बोझ को बढ़ा देता है ना? तो अनावश्यक पास्ट के बारे में सोचते रहना कोई फायदा है उससे? नहीं है। तो फिर क्या करना होगा? पास्ट को, पास्ट को बिंदी लगाना है। जो भी हो चुका है, जो भी बीत गई बातें, उसको हमें फुल स्टॉप लगाना है। तो कैसे फुल स्टॉप लगाएंगे? कोई ऐसे रेजर है या डस्टर है यहाँ, ऐसे हो गया तो मिट गया? इतना इजी है पास्ट को मिटाना, पास्ट की यादों को मिटाना? परमात्मा को दे देंगे। और 10 साल पहले इसने ऐसा किया था, 20 साल पहले इसने ऐसा कहा था, ऐसा हुआ था, ये सारी यादें जो है ना फिल्म के रूप में यहाँ स्टोरेज बढ़ा रहा है। तो स्टोरेज बढ़ जाता है तो हेवीनेस होता है, तो इसको एरेस तो करना पड़ेगा, उसको मिटाना तो पड़ेगा। लेकिन मिटाना तो पूरी तरह शायद मिटा नहीं पाएंगे, लेकिन जो इमोशंस जुड़े हुए हैं उसके साथ, जो नेगेटिव इमोशंस जुड़े हुए हैं, उन इमोशंस को हम कम कर सकते हैं। वो पॉसिबल है जब हम सीखते हैं क्षमा करना। जब तक क्षमा नहीं करेंगे, जब तक हम फॉरगिव नहीं करेंगे, तब तक हम फॉरगेट भी नहीं कर पाएंगे, भूल भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए फॉरगिव करना, क्षमा करना बहुत जरूरी है। क्षमा कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस या नो? कर सकते हैं? करना ही पड़ेगा। मजबूरी से करेंगे या खुशी खुशी से करेंगे? बहन जी बोल रही है चलो कर लेते हैं, करना ही पड़ेगा। अरे मजबूरी से नहीं, खुशी खुशी से। क्यों? उससे फायदा अब हमको समझना पड़ेगा। जब तक हमारा लगेज कम नहीं होता है ना, तो फिर हैवीनेस कम नहीं होगा, फिर खुशी नहीं होगी। तो इसीलिए किसी को क्षमा करके उसके ऊपर हम मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं, खुद को खुश रहना है तो फिर मुझे क्षमा करना पड़ेगा। ठीक है, छोटी मोटी बातों को हम क्षमा कर लेते हैं, लेकिन किसी ने बहुत बड़ा धोखा दे दी होगी बिजनेस में या संबंधों में, बहुत बड़ी धोखा दे दी है, बहुत बड़ा घोटाला कर दिया होगा, तो फिर उसको क्षमा कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। आप सभी तो बहुत अच्छे हैं, क्षमा कर सकते हैं, कह रहे हैं। कई बार हम कहते हैं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना ऊपर ऊपर से कहते हैं क्योंकि वातावरण का प्रभाव रहता है इस पर, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर है ना, हम क्षमा करना नहीं चाहते हैं। क्यों क्यों नहीं चाहते हैं? अंदर से क्षमा करना नहीं चाहते। बहुत हर्ट किया हुआ होता है, किया नहीं, हमने हर्ट ले लिया है, उसने जो कर्म करना था कर लिया, लेकिन दुख हमने उठाई है उससे, तो हम दुखी हो गए हैं, इतना हर्ट हो गए हैं हम, तो इसीलिए कहीं ना कहीं अंदर से ये कहते हैं कभी ना कभी उसको है ना उसका किए का रिटर्न मिलना चाहिए। मुझे इतना दुखी किया है ना, देखना एक दिन दुखी होके मरेगा। भले हम मुख से नहीं कहते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं, अगर उसको कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ होता है तो मन ही मन खुश होते हैं या दुखी होते हैं, देखा होना ही था, मुझे पता था होगा ही, माना इसको क्षमा करना नहीं कहते। क्षमा करना माना दिल से क्षमा करना, दिल से क्षमा करना माना याद ही नहीं करना है, बात को याद नहीं रखना है। दिल से क्षमा करना माना दिल से दुआ देना, जैसे हम अपने प्रिय लोगों को जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं उनको तो हम दुआ देते हैं ना, फूले फले, आगे बढ़े, बहुत तरक्की करे, दिल से हम दुआ देते हैं उनको कि अच्छा रहे, खुश रहे, सुखी रहे, बहुत दिल से दुआ देते हैं। जिनको हम प्यार करते हैं उनको तो दुआ देते हैं, लेकिन जिन्होंने हमको दुख दिया है उनको हम दुआ दे सकते हैं? देना ही पड़ेगा, नहीं दे सकते हैं। हाँ, देना सीखना पड़ेगा, करके देखिए, आप बहुत हल्का, आपको बहुत हल्का फील होगा, दिल से चलो अब भले इतना ज्यादा दुआ नहीं दे, एटलीस्ट चलो वो खुश रहे, सुख रहे, सुखी रहे, तो एटलीस्ट तो जो भी हो गया लेकिन सुखी रहे जीवन में, एटलीस्ट ये करके देखिए तो आपको बहुत हल्कापन महसूस होता है ना। तो जब तक हम फॉरगिव नहीं करते तो अपनी बुद्धि को वहां से हटा नहीं पाते, जब अठा पाएंगे तभी हम उन बोझों को, बोझों से हम मुक्त हो सकते। तो पास्ट को फुल स्टॉप लगाना माना क्षमा करना, क्षमा करना माना दिल से दुआ देना सभी को, सभी को, है ना। और दूसरे प्रकार के बोझ जो हम उठा के चलते हैं वो कौन सा है? अनावश्यक फ्यूचर के बारे में सोच, भविष्य के बारे में सोचना, हर एक को चिंता है कल क्या होगा, है कि नहीं है? हर एक को चिंता है, बच्चे बड़े हो जाने के बाद क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, अनहोनी हो गया तो, मतलब बहुत प्रकार के इनसिक्योरिटीज है, बहुत प्रकार के डर है मन में, तो उन बातों को लेकर के चिंतित होते हैं। तो उन चिंताओं से कुछ फायदा है? चिंताओं से फायदा है कुछ? कहते हैं चिंता चिता समान है ना, होने से, घटनाएं होने से पहले हम यहां घटते हैं, वो घटनाएं यहां घटते हैं, यहां होते 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 वो स्थूल रूप में भी आ जाता है ना। इनसिक्योरिटीज जो डर लेकर के चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो इन सिक्योरिटीज के कारण से हमेशा नेगेटिव इंसिडेंट्स हमारे जीवन में घटते रहेंगे। डर के कारण से राइट पॉजिटिव सोचेंगे या नेगेटिव सोचेंगे? नेगेटिव सोचेंगे। अगर आपके मोहल्ले में बहुत सारे चोरियां हो रही है उन दिनों में, तो आपके मन में क्या होगा? हमारे घर में भी चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। अगर मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों नौकरी करने जा रहे हैं एक साथ 9 बजे सुबह उठ करके, तो एक साथ जब लॉक लगा करके जा रहे हैं, तो उनके मन में क्या विचार होते हैं? एक बार फिर से चेक करो कहीं हमारे घर में चोरी ना हो जाए। तो इन विचारों के साथ वो लॉक लगा करके निकल रहे हैं, तो कैसे वाइब्रेशंस फैला रहे हैं अपने घर की चारों तरफ? यह पॉजिटिव है नेगेटिव है? हमारे घर में कहीं चोरी ना हो जाए, यह पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव क्या है फिर? निश्चिंत हो जाए, हो सकते हैं निश्चिंत, जो होगा ठीक होगा, अगर चोरी भी हो जाए तो ठीक है। होना था। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वो सेंटेंस में नेगेटिव शब्द है ना, कहीं चोरी ना हो जाए, नहीं जिसमें आ जाता है ना, जिस सेंटेंस में नहीं शब्द आता है तो वो तो नेगेटिव है ही। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि हम चोरों को याद कर रहे हैं, और उन जिसको भी हम याद किया, हमारी मन की शक्ति तो जाएगा ही। अगर मान लीजिए, अगर आपको कहे अगले 30 सेकंड के लिए आप बंदर को याद नहीं करना, तो क्या याद आएगा? बंदर ही याद। भले आप इतने सालों से बंदर को याद नहीं किया होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा अगले 30 सेकंड के लिए आप बंदर को याद नहीं करना, तो बंदर ही याद आ गया है ना। बंदर कहा, फिर कहा नहीं, बंदर को याद नहीं बाद में आया ना, तो बंदर आ गया पहले। तो बंदर शब्द सुनते ही उसका चित्र मन में आ जाता है, फिर कहे वो बंदर भाग जाओ, वो नहीं भागता है ना। तो ऐसे ही कोई भी नेगेटिविटी को हम याद करते हैं, उसको एनर्जी चली गई, और मन हमेशा विजुलाइजेशन से सोचता है, चित्रों में सोचता है, और नहीं शब्द का कोई चित्र है ही नहीं। नहीं शब्द का कोई चित्र है नहीं है। बंदर का चित्र है, लेकिन नहीं का चित्र है ही नहीं। तो मन चित्रीकरण विजुलाइजेशन से सोचने के कारण से नेगेटिव जब हम सोचते हैं, नेगेटिविटी को भी वो एनर्जी चला जाता है। तो इसीलिए क्या सोचना है, हमारे घर में चोरी ना हो जाए, उसके बजाय क्या सोचना है? हमारा घर सुरक्षित, सुरक्षा के बारे में सोचेंगे सुरक्षित रहेगा, चोरी के बारे में सोचेंगे चोरी होगी, बीमारी के बारे में सोचेंगे मैं बीमार हूं, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, दर्द के बारे में सोचेंगे क्या होगा? दर्द बढ़ेगा है ना। मैं तंदुरुस्त हूं, तंदुरुस्ती के बारे में सोचेंगे तंदुरुस्त रहेंगे है ना। जो चाहिए लाइफ में उसके बारे में सोचे, जो लाइफ में नहीं चाहिए उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचे। तब जाकर के हम फ्यूचर के बारे में जो एक्स्ट्रा लगेज लेकर के घूमते हैं ना, एक्स्ट्रा लगेज अनावश्यक ही होता है, डर के कारण से, इनसिक्योरिटी के कारण से वो लगेज ज्यादा हो जाता है। जब हम पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, तो पॉजिटिविटी जब हम दे रहे हैं, तो हमारा भविष्य भी पॉजिटिव होगा। इस रीति से दोनों पास्ट और फ्यूचर के एक्स्ट्रा लगेज हम निकाल देते हैं, वर्तमान में हम अच्छी रीति जी सकते हैं। वर्तमान भव्य उज्जवल है तो भविष्य उज्जवल होगा ही, लगेज कम रखना लाइफ में। और तीसरी शक्ति है पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति। सहन करना एक शक्ति है, कमजोरी है? शक्ति है कमजोरी, शक्ति है, लेकिन कोई कोई मानते नहीं है ना। सहन करना, सहनशीलता एक शक्ति है कमजोरी है? शक्ति है, पक्का है। तो जब आप मानते हैं तो उसको फॉलो क्यों नहीं करते? जब आप मानते हैं वो एक शक्ति है तो फॉलो क्यों नहीं करते, उसको धारण क्यों नहीं करते? क्योंकि जब भी कोई कुछ ऐसा कुछ व्यक्ति बोलता है या फिर डांट लगाते हैं तो हम कहते हैं कि दबदबा तो दिखाना पड़ेगा ना, अगर हम चुप रहेंगे तो हमको कुचाल देंगे। तो वो मान्यता अलग है, एक तरफ हम कह रहे हैं सहन करना एक शक्ति है, दूसरे तरफ उनको उसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मान्यताओं में वो कॉन्फ्लिक्ट है ना, कि मुझे सहन करना नहीं है, अगर सहन करूंगी तो फिर उनको वो मुझे कुचाल देंगे, और भी दबा देंगे, और भी मुझे ये करेंगे, मेरे ऊपर और भी अत्याचार करेंगे। वो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं, तो सही क्या है फिर? सही क्या है? अप टू सर्टेन एक्सटेंट। वो एक्सटेंट क्या है, वो लिमिट क्या है, जहां तक हम सहन कर सकते ये है लिमिट, इसके बाद में क्रॉस हो गया तो लिमिट ये नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। क्या लिमिट? क्यों नहीं सहन कर पा रहे हैं? क्योंकि उसके सही अर्थ हमें पता नहीं है। सहनशीलता दो शब्द है राइट, उसको संधि विच्छेद करेंगे, सहन और शीलता। सहन माना ऊपर से चुप, शीलता माना अंदर से ठंडक, पॉजिटिव। शीतल माना ठंडक है ना, कूल, शांत है ना। तो हम सभी के अंदर वो शक्ति है सहन, हम कुछ परिस्थितियों को सहन करते हैं, कुछ परिस्थितियों को सहन नहीं करते हैं। कौन सी परिस्थितियों को हम सहन करते हैं? इजी लगता है सहन करना, जो अपने हित में है तो उसको सहन करना नहीं कहेंगे। जो कुछ आता है फिर उसको सहन करना, तो उसको मना, वो अपने हित में, अर्थ परिस्थिति हमारे हित में है ना। तो सहनशीलता का सही मायना ये है कि शीतल, लेकिन फिर कुछ परिस्थितियों को जब हम सहन करते हैं, क्यों सहन कर पा रहे हैं? इजी लगता है सहन करना वो उन परिस्थितियों में, क्योंकि उन व्यक्तियों के प्रति मुझे प्यार है, जिनके प्रति मेरा प्यार है उनको सहन करना मेरे लिए इजी हो जाता है। अपने बच्चों को सहन करना इजी है, इजी है, अपना खून है, बहुओं को, बहुओं को सहन करना इजी है। जहां अपनापन है वहां सहन करना आसान है। बेटी को सहन करेंगे क्योंकि मुझे पता है मेरा खून है राइट, तो दूसरे मेंबर है फैमिली का तो उनको हम सहन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो फीलिंग ही नहीं, अपनेपन की भावना ही नहीं है ना। इसकी गलती हम छुपाते हैं, इसकी गलती सारे मोहल्ले में डंडोरा पिटा के आते हैं। वो अंतर क्यों है? अपनापन, वहां प्यार है यहां प्यार नहीं है, यहां अपनापन है यहां अपनापन नहीं है। तो इसलिए सहन अगर करना है उस पर हमें मेहनत नहीं करना है, किस पे मेहनत करना है? प्यार, प्यार को जागृत करने की जरूरत है हर व्यक्ति के प्रति। अपनेपन की भावना आ गई, ये व्यक्ति अपना है, ये भावना आ गई, उसको सहन करना इजी हो जाता, मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि वो पराया व्यक्ति लगता है ना। तो इसीलिए प्यार की शक्ति, स्नेह की शक्ति को बढ़ाना है, आत्मिक स्नेह। जब हमारे पास आत्मिक स्नेह है, हर व्यक्ति अपने हैं, ये भावना जागृत हो जाता तो उस हर व्यक्ति को सहन करना इजी हो जाता, क्योंकि मोहब्बत में मेहनत नहीं लगता, कहते हैं ना एक कहावत है, मोहब्बत में मेहनत नहीं, जहां मोहब्बत वहां है, सही आध्यात्मिक मोहब्बत है, एक रूहानी मोहब्बत है, तो सही एक डिवाइन एक दिव्य स्नेह है, वहां मेहनत नहीं लगता, तो इसके इजी है सहन करना। लेकिन कई बार सहन कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन फिर हम कहते हैं कि क्या मुझे ही सहन करना है, सामने वाले भी समझे ना, सामने वाले भी सोचे ना, तो लिमिट की बात आ जाती है, मैं यहां तक ही मैं सहन कर सकती हूँ। तो सहन, आप कोई प्रेशर कुकर है क्या? मम्मा जो मम्मा का फोटो आपने देखा होगा ना, हमारी जो मम्मा के सामने आकर के कहते थे कोई कि मम्मा कब तक मैं सहन करूं, मम्मा बहुत प्यार से कहती थी तुम प्रेशर कुकर हो क्या? प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ते 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 अगर वो सीटी नहीं बजती या फिर वो ऊपर का वाल्व वो नहीं होता तो फिर वो फट जाता है। तो ऐसे यहाँ प्रेशर बढ़ते 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 अगर मेरा जो सीटी यहाँ अगर नहीं बजेगा, यहाँ बजेगा तो ये फट जाएगा, है ना? तो इसीलिए कहते थे प्रेशर कुकर है क्या आप? हम प्रेशर कुकर नहीं है। तो प्रेशर डेवलप करने ही नहीं देना है, बस प्रेशर ही डेवलप नहीं हुआ तो फिर फटने का नौबत आएगा ही नहीं। तो शीतल था सहन, शीतल शीतल अंदर से अगर पॉजिटिव है, अंदर से वो प्यार है हर एक के प्रति, वो फिर प्रेशर डेवलप होगा ही नहीं, नेगेटिविटी डेवलप होगा ही नहीं जो फटने की नौबत आएगी। तो फिर अभ्यास करने की जरूरत है, अभ्यास करते करते फिर हमको सहन करना बहुत इजी लगने लगता है। और नेक्स्ट शक्ति है पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति। इस चित्र में क्या देख रहे हैं? सागर देख रहे हैं। सागर की विशेषता कि आप सभी बॉम्बे से हैं, राइट? सागर तो अप्रोच देखते होंगे, सागर की विशेषता क्या है? सब चीज विशाल है, सब कुछ समा लेता है, लेकिन बाद में सब कुछ समा तो लेता है लेकिन किचड़े को फिर बाहर फेंक देता है ना? किचड़े को वो कभी अंदर नहीं लेता, सब कुछ ले तो लेता है लेकिन किचड़े को बाहर कर देता है। ऐसे ही हर एक के साथ मुझे एडजस्ट करना है, तो सागर का ये जो गुण है ना उसको हमें अपनाना पड़ेगा। सागर का गुण क्या है? अपना लिया, आप जो है जैसे है मेरे हो। अपना तो लिया, अपना लेने के बाद उसके अंदर जो अवगुण है, अवगुण को चित्त में धरो नहीं देते, कहते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर हाँ, मैं परखने की तो जरूरत है इसके साथ संबंध जोड़ना है कि नहीं, जो परख लेने के बाद हमने एक्सेप्ट कर लिया ये मेरे हैं, तो अपना लिया। हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में आते हैं उसके पास पॉजिटिविटी भी है तो नेगेटिविटी भी है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई भी 100% गुणवान नहीं है, कोई भी मेरे जीवन में आएगा वो उसके पास दोनों है, तो फिर उसको ऐसे ही मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या होगा? एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या होगा? हमेशा उसके नेगेटिविटी को देखते रहेंगे, वीकनेसेस को देखते रहेंगे, अवगुणों को देखते रहेंगे। अगर आपको कहे आपके जो वाइफ युगल, आपके जो युगल है या हस्बैंड है या वाइफ है तो हस्बैंड है, राइट? तो आपके युगल के कोई भी तीन गुण के बारे में सोचिए, सोच सकते हैं? तीन गुण, ज्यादा नहीं, तीन ही गुण बस आया मन में। ओके, अभी आपने युगल के तीन अवगुण के बारे में सोचिए। आया? कौन सा इजी था? अवगुण सोचना इजी था, गुण सोचना इजी था? अवगुण सोचना इजी था या गुण सोचना इजी था? अवगुण जल्दी आ जाता है, अवगुण जल्दी आ गया ना, वो इजी था नोट डाउन करना। तीन ही पहला बोला बहन जी ने, और दस बोलते तो दस भी लिख देता, दस भी आ जाता। अवगुण सोचना इजी था, क्यों? क्यों? क्योंकि सारा दिन उसी को देखते हैं, इसके अंदर ये अवगुण है, इसके अंदर ये अवगुण है, इसके अंदर ये अवगुण है, तो अवगुण ही देखने कारण से वो मेहनत नहीं लगा आपको लिस्ट बनाने में। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर गुण नहीं है, लेकिन हम देखते नहीं है ना। गुण देखना क्यों मुश्किल था? क्योंकि आपने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया, ऑब्जर्व ही नहीं किया, राइट? तो इससे किसका नुकसान है? इससे किसका नुकसान है? खुद के नुकसान है, क्योंकि केवल मैं अवगुणों को पिक कर रही हूं, ले रही हूं, तो ये मेरा क्या हो जाता? डस्टबिन। डस्टबिन में क्या किचड़ा ही रहता है ना, ये नेगेटिविटी जो भी है वो किचड़ा ही है। तो यहां मैं किचड़ा को कलेक्ट कर रही हूं, ये डस्टबिन हो जाएगा, तो डस्टबिन के आसपास खुशबू रहेगा या बदबू रहेगा? खुशबू रहेगा या बदबू रहेगा? बदबू ही है। बदबू माना, अगर यहां नेगेटिविटी भरा हुआ है, मेरे से बाहर जो शब्द निकलेंगे वो भी नेगेटिविटी निकलेगा ना। तो इसीलिए डस्टबिन के बजाय हमें क्या बनना है अभी? डस्टबिन के बजाय क्या बनना है अभी हमें? क्या बनना है? हीरा। हीरे किसमें रहता है? हीरे बहुत सुंदर डब्बे में रखते हैं, ऐसा वैसे डस्टबिन में या कोई ऐसे साधारण शब्द इसमें डब्बे में नहीं रखते हैं, है ना? और वो बहुत थोड़े होते हैं, किचड़ा तो भरा हुआ होता है, लेकिन हीरा बहुत वैल्यूएबल है ना। तो इसीलिए अगर हम हीरा अपना आपको समझते हैं, हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, और हर एक के गुणों को हम देखते चलते हैं, उसके साथ एडजस्ट होकर के चलना इजी हो जाता है। एडजस्ट करना क्यों मुश्किल हो रहा है? क्योंकि अवगुणों को देख रहे हैं, गुणों को हम नहीं देख रहे हैं। ये आदत को हमें बदलना पड़ेगा, अवगुणों के बजाय गुणों को चुगने की आदत हमें डालने की जरूरत है। और दूसरी एक वास्तविकता है कि जैसे मैंने कहा कि हर एक के अंदर ना, ये परसेंटेज में ना कुछ गुण भी है तो कुछ अवगुण भी है। हर एक के अंदर है, माना खुद के अंदर भी कुछ गुण है तो कुछ अवगुण है। जब मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं 100% गुण वाली नहीं हूं, तो मैं दूसरों को कैसे एक्सपेक्ट कर सकती वो 100% गुण वाला होना चाहिए? मैं परफेक्ट नहीं हूं तो मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकती हूं वो व्यक्ति परफेक्ट होना चाहिए। तो इसीलिए ये एक्सेप्ट करना सीखे कि ठीक है, सबके अंदर वो परसेंटेज है, लेकिन केवल गुणों के बारे में सोचते चलना है। और नेक्स्ट शक्ति है पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति। इस चित्र में हीरे को परख रहे हैं, हीरे को परखने के लिए लेंस की जरूरत होता है, और सोने को परखने के लिए कसौटी। वो पत्थर के ऊपर घिसते हैं तो पता चलता है कि कितने कैरेट का वो गोल्ड है ना। तो हम अपने जीवन में व्यक्ति को और परिस्थिति को परखते हैं। परखने के लिए ये यहां तो हम लेंस यूज कर रहे हैं, जीवन में क्या यूज करें जिसके आधार से हमको पता चले ये व्यक्ति क्या है, या पर इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। बुद्धि, बुद्धि से पता चलता है, लेकिन बुद्धि के अंदर किचड़ा भरा हुआ है तो नेगेटिविटी है तो बुद्धि के अंदर क्या होना चाहिए जिसके आधार से हम अच्छी रीति परख सकते हैं व्यक्ति को, विवेक, या विवेक को किसके दूसरे शब्दों में हम कहते हैं विजडम, विजडम या प्रज्ञा कहते हैं। वो अगर प्रज्ञा है, विजडम है, तो फिर पता चलता है, वाइज व्यक्ति कहते हैं ना, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट अलग है, वाइज अलग है। इंटेलिजेंट माना वो किताबी शब्दों या उस प्रोफेशनल, ये वो ठीक है, लेकिन वाइज माना इंसानों के साथ चलने के लिए भी वो होशियार है, जैसे वो वाइज व्यक्ति, तो वो विजडम, जिसके अंदर विजडम है तो वो वाइज कहते हैं उसको। वो विजडम कहां से आएगा? तीन लेवल है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम है। इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलता है? न्यूज़पेपर, टीवी, जो भी हमको सुनाई देता है, दिखाई देता है, उससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। इंफॉर्मेशन नॉलेज में कैसे परिवर्तन होगा? नेक्स्ट स्टेप है वो, राइट? इंफॉर्मेशन नॉलेज में कैसे परिवर्तन होगा? विचार मंथन से। अगर एक लाइन का इंफॉर्मेशन आपको मिला, क्रोध नहीं करना चाहिए, इंफॉर्मेशन है, क्रोध नहीं करना चाहिए, तो वो नॉलेज में कैसे परिवर्तन होगा, ज्ञान में कैसे परिवर्तन होगा? इंप्लीमेंट करने से, एक्सेप्ट करना पड़े। कैसे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, माना एक लाइन का इंफॉर्मेशन है, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी ने आकर के बोल दिया कि हाँ क्रोध नहीं करना चाहिए, बड़ों ने कहा, किसी ने, संत ने कहा, किसी ने कहा, क्रोध नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, वो क्यों क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए, करने से हानि क्या होगा, ना करने से लाभ क्या होगा, तो ये सभी अंडरस्टैंडिंग। इन्फॉर्मेशन तो एक लाइन का था, लेकिन वो क्यों नहीं करना चाहिए, जब अच्छी रीति समझ गए तो वो ब्लाइंड फेथ नहीं हुआ, वो फिर ज्ञान में परिवर्तन हो गया। अगर केवल ब्लाइंड फेथ है कि इसने कहा तो इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए, जब तक वो व्यक्ति है तो मैं क्रोध नहीं करूंगी, जब वो व्यक्ति निकल जाए तो मैं क्रोध करना शुरू करूंगी, लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग है तो फिर वो है या नहीं है वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, राइट? और वो नॉलेज, नॉलेज में ताकत है, इंफॉर्मेशन में इतना ताकत नहीं है। तो नॉलेज और विजडम में क्या अंतर है? समझ है क्रोध नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं ना, वहां हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शक्तियां नहीं है, राइट? जब जैसे जैसे हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, करते 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 वो नॉलेज के साथ साथ एक और चीज ऐड हो जाता है, वो कौन सी चीज है? अनुभव, अनुभव करते करते, प्रैक्टिकली करते करते अनुभव हो जाता है ना। थियोरेटिकल नॉलेज अलग है, लेकिन प्रैक्टिकली करने लगते हैं तो अनुभव हो जाता है, तो फिर वो परिकाष्ठा या विजडम बन जाता है ना। तो स्पिरिचुअल विजडम, आध्यात्मिक प्रज्ञा अगर जिसके अंदर है तो उसकी बुद्धि बहुत क्लियर रहता है। जितना जितना हम मेडिटेशन करते, आध्यात्मिकता की गहराई में जाना शुरू करते हैं, क्लैरिटी आने लगता है, जीवन के बारे में क्लैरिटी आने लगता है। जब क्लियर हो, मतलब क्लैरिटी आता है, या बुद्धि के अंदर वो ताकत और क्लैरिटी जब है, तो डिस्क्रिमिनेट करना, व्यक्ति को या परिस्थिति को परखना इजी हो जाता है, ठीक है? मेडिटेशन से ये शक्ति हमें प्राप्त होता है। और दूसरी नेक्स्ट शक्ति है पावर टू डिसाइड, निर्णय करने की शक्ति। जैसा हम परखते हैं उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं, निर्णय लेते हैं, राइट? तो निर्णय की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है लाइफ में। एक रॉन्ग डिसीशन जीवन की दिशा ही बदल जाता है, राइट? जीवन में सुबह, मतलब छोटे मोटे डिसीशन तो हर घड़ी हम करते रहते हैं, सुबह उठते हैं तो चाय पीना है, कॉफी पीना है, कौन से कलर का ड्रेस पहनना है, कौन सा नाश्ता करना है, तो ये छोटे मोटे डिसीशंस तो चलता है। थोड़ा बहुत अंतर हो गया, चाय के बजाय कॉफी पी लिया, पोहा के बजाय उपमा खा लिया, तो कोई नहीं फर्क पड़ता लाइफ में। लेकिन महत्वपूर्ण जो डिसीशंस हैं लाइफ के, वो लाइफ की जो दिशा है वो ही परिवर्तन हो जाता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो इस चित्र में क्या देख रहे हैं, न्याय की देवी की मूर्ति देख रहे हैं, गॉडेस ऑफ जस्टिस कहते हैं। इस मूर्ति को कहां देखते हैं हम, कोर्ट में देखते हैं, और एक हाथ में तराजू है और दूसरे हाथ में तलवार है। तराजू किसका प्रतीक है, बैलेंस हो, अनबायस्ड डिसीशन हो, इम्पार्शियल डिसीशन हो, तोल मोल करके वो डिसीशन दे, है ना। और तलवार माना एक ठुक हो करके, बिना कुछ माना अपना पराया देख करके, माना ज्ञान की तलवार कहते हैं, समझ करके एक ठुक हो करके निर्णय देना, उसके लिए बहुत शक्ति की जरूरत है। कहां भी थोड़ा सा नरम पड़ गए तो डिसीशंस रॉन्ग हो सकता है ना, थोड़ा सा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, आंखों पर पट्टी है। पट्टी का मतलब अनबायस, क्या आंखों पर पट्टी बांधने से या आंखों को बंद करने से आपके राइट डिसीशंस होते हैं, अनबायस डिसीशंस होते हैं, इम्पार्शियल हो सकता है आंखों को बंद करने से। सिंबल है लेकिन उसका अर्थ क्या है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, निर्णय लेने के लिए देखने की जरूरत है कि नहीं है, देखने की जरूरत नहीं, ये काला है पीला है ये कौन है क्या है वो देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि केवल हम बाहरी शब्दों वेद के देखते हैं अगर चलते हैं तो महाभारत महाभारत नहीं होता। अगर आंखों उन्होंने जो भी निर्णय लिया, भले आंख नहीं था लेकिन जो भी निर्णय लिया वो पुत्र मोहवश गलत ही निर्णय लिया, तो आंखों को बंद करने से आपका निर्णय राइट नहीं हो जाते। लेकिन इसका अर्थ ये है कि ये मैसेज दे रहा है कि इन आंखों से जो दिखाई देता है उस पर 100% विश्वास नहीं करो। कई बार आंखें धोखा खा लेते हैं, जो दिखता है वैसा होता ही नहीं है। हम कभी कभी वो इसमें जल्दीबाजी में आकर के गलत निर्णय लेते हैं, फिर सच्चाई जब पता चलता है तो पता चलता है अरे मैंने बहुत बड़ी गलती की, है ना। बचपन में एक वो नहीं सुनते थे वो मंगो नेवला, वो एक घर में वो जंगल में परिवार बसा था, वो हस्बैंड रोज बाहर जाता था लकड़ी काटने के लिए, वो महिला अकेली थी और एक बच्चा था, 6 महीने का बच्चा था, उसके घर में एक नेवला था। एक बार पानी भर करके वापस आ रही थी कुएं से, पानी भर के जो घर के आंगन में, वो उसने क्या देखा, नेवले के मुंह पे खून के डब्बे देखी, तो उसने वो देख करके क्या सोचा, मेरे बच्चे को मार दिया, तो घड़े को नेवले के ऊपर मार करके वो अंदर जा करके देखा तो सांप मरा था, बच्चा जिंदा था। तो फिर बाद में उसको अफसोस, अरे अरे हाँ तो मैंने उसको मार दिया। तो ऐसे कई बार अपने लाइफ में भी कुछ देखते हैं, जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं, निर्णय लेके कर्म भी कर लेते हैं, फिर बाद में जब सच्चाई पता चलता है तो अफसोस करते हैं। अगर वो महिला थोड़ा सा धीरज धरती ना, अंदर जाके देखती हूं मेरे बच्चे का क्या है, तो थोड़ा सा धीरज धर के अंदर जाती तो सच्चाई पता चलती। लेकिन जल्दीबाजी में इतने गुस्सा आ गया उसको, गुस्से में वो कंट्रोल नहीं कर पाए, वो कर्म निर्णय लेकर के कर्म भी कर लिया, उसको मार भी दिया, फिर जाकर के अफसोस किया, है ना। तो थोड़ा सा धीरज, आंखों पर जो दिखाई देते वो तुरंत निर्णय नहीं ले लेने का, थोड़ा सा धीरज धर करके फिर सच्चाई क्या है थोड़ा सा पता चलता है, फिर आप निर्णय लें। और दूसरी बात है आंखों पर पट्टी माना, अंतर मन की आवाज को सुनने की आदत डालना। अंतर मन कभी भी झूठ नहीं बोलता, इंट्यूशन जिसको कहते हैं, उसको सुनने की आदत हम डालते हैं तो हमेशा सच बोलता है। अब मान ले कोई एक बच्चा है, अगर वो चोरी करने की आदत डाल रहा है तो अंदर तो द्वंद्व चलेगा ना, करना है कि नहीं करना है, नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पाप है, नहीं करना चाहिए, लेकिन भूख भी लग रहा है, तो मतलब बहुत द्वंद्व चलता है अंदर। अगर अंतर मन जो भी बोल रहा है वो राइट बोल रहा है, झूठ करना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ये सच ही बोल रहा है, अच्छा ही बोल रहा है, राइट ही बोल रहा है, लेकिन फिर मन का प्रलोभन ये होता है ना। तो इंट्यूशन, अंतर मन की, मन को सुनने की आदत जब हम डालते हैं, उसके साथ साथ हिम्मत भी चाहिए उस जैसे कर्म करने के लिए। अगर आदत है झूठ बोलने की, अंतर मन कह रहा है झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, लेकिन हिम्मत नहीं है सच बोलने की, है ना। तो अंतर मन को सुनने की एक आदत है और दूसरा है हिम्मत। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हम सही रास्ते पर जाना शुरू करते हैं। तो अंतर मन के, मन को सुनने की आदत कैसे डालेंगे? जितना मन शांत है उतना हम अंतर मन को सुन सकते हैं। हमेशा द्वंद्व चलता है, कोई भी परिस्थिति आती है तो क्या करना है, ये करना है, वो करना है, ये करने से ऐसा होगा, वे वो करने, बहुत कुछ चलता है यहाँ द्वंद्व। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो क्या होता है कि मन को हम शांत करते हैं, उसकी स्पीड को कम करते हैं। जितना जितना मन शांत होता जाता है फिर जो अंतर मन की आवाज है उसको हम बुलंदी से सुन सकते हैं। तो इसीलिए शांति को शक्ति क्यों कहते हैं, शांति की शक्ति को धारण करने के लिए, शांति को शक्ति क्यों कहते हैं, शांति की शक्ति जब हमारे अंदर अनुभूति होगी, वो जो इंट्यूशन है ना, इंट्यूशन की शक्ति बढ़ता जाता है। बुद्धि तो क्लियर होता ही जाता है लेकिन इंट्यूशन की शक्ति भी बढ़ता जाता है। तो ये ताकत है, आत्मा की शक्ति है। तो जितना हो सके उतना शांति की शक्ति की अनुभूति जब हम करते हैं हमारे निर्णय भी राइट होने लगते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट शक्ति है सामना करने की शक्ति। आप कह रहे थे ना कितना हद तक सहन करना है, सहन करना भी एक शक्ति है और सामना करना भी एक शक्ति है, लेकिन दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट है। सहन करना भी शक्ति है, सामना करना भी शक्ति है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कौन सी परिस्थिति में मुझे सहन करना है और कौन सी परिस्थिति में मुझे सामना करना है। कौन सी परिस्थिति में सहन करेंगे और कौन सी परिस्थिति में सामना करेंगे, और सहन किसको करेंगे, जनरेशन का सहन किसको करेंगे, सामना किसको करेंगे, अंदर नया डिफिशन में सुन रही हूं, अंदर की शक्ति बाहर की शक्ति, अंदर की शक्ति क्या होता है, बाहर की शक्ति क्या होता है, दूसरों को सहन करो, लोगों को सहन करो और परिस्थिति को सामना करो। परिस्थिति भी व्यक्ति से अगर क्रिएट हुआ है तो परिस्थिति माना केवल प्राकृतिक आपदाएं नहीं ना, प्राकृतिक आपदाओं को तो हमें सामना करना ही पड़ेगा, राइट, वो तो ठीक है, लेकिन कोई परिस्थितियां लाइफ में व्यक्ति से क्रिएट हुआ होता है, उसने कुछ बोल दिया, कुछ हो गया तो उसके कारण से परिस्थिति बन गई, राइट, व्यक्ति के कारण से वो परिस्थिति हो गई है तो फिर उस समय क्या करेंगे? अपने को विड्रॉ करके रियलाइज उसमें सामना करना है या सहन करना है. सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है. हाँ, थोड़ा सा क्लैरिटी. वैसे तो प्रैक्टिकली जीवन लीड करते करते पता चलता है कि कौन से परिस्थिति में सहन करना है, लेकिन मोटे तरीके से थोड़ा सा बाइफर्केट, थोड़ा क्लैरिटी आ जाता है तो फिर और इजी हो जाता है. जैसे आपने कहा, व्यक्ति को सहन करना है और परिस्थिति को सामना करना है, राइट. अगर व्यक्ति से क्रिएट हुआ है परिस्थिति, जिस उस व्यक्ति से मुझे नफरत नहीं है, परिस्थिति जो होना चाहिए तो वो नहीं है, उससे नफरत है. तो इसलिए कहते हैं, पापी से नफरत नहीं करो, पाप से नफरत करो. वो जो पाप कर्म कर रहा है उसके ऊपर मुझे रहम आना चाहिए, उससे नफरत नहीं है, उससे उसके ऊपर रहम है, लेकिन उसको ठीक भी करना है, उसको तो ऐसे छोड़ नहीं सकते. इसीलिए वो जो लॉ लीगल जो भी बनाओ, जुडिशरी जो बनी हुई है, वो तो है ही, डिसिप्लिन तो चाहिए. डिसिप्लिन को क्रॉस करेंगे तो फिर उसको सजा तो मिलना ही है ना. तो लेकिन किस हद तक सहन करना है? जैसे अगर वो उसने गलती की, प्रिजन में ले गए, लेकिन उस वो भावना क्या रखना है, उसको परिवर्तन करने की भावना रखना है ना. ऐसा नहीं कि उसको सजा देना है. सजा भी क्यों देते हैं? परिवर्तन हो जाए, रियलाइजेशन हो जाए, वो व्यक्ति अच्छा हो जाए. घर में भी अगर कोई गलती करता है, उससे नफरत नहीं, उससे रहम, उसके ऊपर रहम करके डिसिप्लिनरी एक्शन तो लेना पड़ेगा, लेकिन किस भावना से डिसिप्लिनरी एक्शन देना पड़ेगा ये सुधर जाए. पाप से नफरत करो, पापी से नहीं. तो वो हो सकता है जब आंतरिक रूप से हम उसके ऊपर रहम करते हैं. रहम के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता. और कोई भी परिस्थिति है, नेगेटिविटी को आधार बना करके अगर करते हैं सामना, उसमें सफलता नहीं मिलती. पॉजिटिविटी को आधार बना करके सामना करते हैं तो फिर सफलता मिलती है. मोटे तरीके से हम देख सकते हैं स्वतंत्रता कैसे मिले, उसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारे ये है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं. तो नॉन वायलेंस गुणों को आधार बना करके अगर हम लड़ते हैं तो फिर सफलता मिलती. हमें ब्रिटिशर्स से नफरत नहीं था, लेकिन जो वो लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे उससे नफरत था. हमें उनके देश को नष्ट नहीं करना था, लेकिन हमें स्वतंत्रता चाहिए था, है ना. तो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी थोड़ा सा अगर देखते हैं, नफरत को नहीं पालना चाहिए हमें. नफरत से कोई भी कर्म करते हैं तो वो सामना करने की शक्ति हम नहीं कह सकते. पॉजिटिविटी को आधार बना करके अगर हम उसको सामना करते हैं तो इजी हो जाता है. जैसे यहां इस चित्र में देख रहे हैं, एक व्यक्ति सर्फिंग कर रहा है, उसको स्किल भी पता है और उसको एंजॉय कर रहा है. एंजॉय क्यों कर रहा है वो सर्फिंग? स्किल पता है और इसे वो डर नहीं रहा है उस वेव से, उसको डर नहीं लग रहा है क्योंकि उसको पता है क्या करना है, तब वो एंजॉय कर रहा है. Enjoying the challenge. ऐसे ही हमारे लाइफ में चैलेंजेस तो आएगी ना, परिस्थितियां तो आएगी ना, लेकिन अगर अंदर वो विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उन चैलेंजेस को हम एंजॉय करते हैं. लेकिन अगर लाइफ एक ही लाइन में चलता रहे, कोई अप्स एंड डाउन्स ही नहीं है, तो मजा आएगा नहीं ना. कोई अप्स एंड डाउन्स तो होना चाहिए. अप्स एंड डाउन्स को भी एंजॉय करने के लिए वो शक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है. जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, वो अंदर वो पता है मैं सामना कर सकती हूँ, वो अंदर शक्ति है, तो फिर हम हर चैलेंज को सामना कर सकते हैं, हर चैलेंज को हम एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट शक्ति है पावर टू कोऑपरेट, आठवीं शक्ति है। सहयोग देना और लेना दोनों चाहिए ना। सहयोग केवल मांगने से मिलेगा? प्लीज मुझे हेल्प कर दो, प्लीज मुझे मदद कर दो, हेल्प मांगने से मिलेगा? क्या कहेंगे? मांगने से एक दो बार तो मिल ही जाएगा, लेकिन देने से, जितना हम देते जाएंगे उतना हमें मिलता जाएगा, लेकिन जब हम हेल्प करते हैं तो क्या सोच करके करते हैं? जहां भी कुछ लाभ मिल रहा हो ना, रिटर्न मिलने की संभावना है, तो वहां हम मदद कर लेते हैं। रिटर्न मिलने की संभावना है ही नहीं तो थोड़ा सा कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। क्यों 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 नहीं मिल रहा है इसीलिए। लेकिन ये भी कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, हर एक को मदद करते जाओ और बोलते जाओ, कर्म किए जाओ, कर्म की फल की इच्छा ना कर। ऐसा होगा? ऐसा हो सकता है? कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है ऐसे कर्म, बिना एक्सपेक्टेशन के कोई कर्म करते हैं? नहीं करना चाहिए, वही करना चाहिए, बिना एक्सपेक्टेशन के कर्म करना चाहिए, लेकिन करते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी नहीं है। ह्यूमन टेंडेंसी जो है वो एक्सपेक्टेशन रख करके ही कर्म करने की टेंडेंसी है। आप लोग सभी यहां आए हैं, क्यों आए हैं? विदाउट एक्सपेक्टेशन आप यहां आए हैं? विदाउट एक्सपेक्टेशन आए हैं या विथ एक्सपेक्टेशन आए हैं? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तो आएंगे आप यहां? आएंगे यहां? नहीं आएंगे। एक्सपेक्टेशन तो रखे हैं, यहां जाएंगे तो फिर कुछ समझने की बातें मिलेगी और कुछ मतलब मेडिटेशन कुछ तो मतलब अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगा। एक्सपेक्टेशन रख करके ही आए हैं ना। तो कोई भी कर्म हम करते हैं ना, बिना एक्सपेक्टेशन के हम करते ही नहीं है, राइट? ये समझने की, इसको नकार नहीं सकते, दैट इज द रियलिटी, राइट? ओके, तो जब हम ये कहते हैं किसी को मदद करो, एक्सपेक्टेशन के बिना मदद करो, वो संभव है? संभव है? हाँ, ये एक्सपेक्टेशन तो है। ये एक्सपेक्टेशन तो है, लेकिन कई बार क्या करते हैं हम, एक लिमिटेशन हो जाता है, मैं इसको मदद कर रही हूं तो इसी से मुझे रिटर्न चाहिए। जब वो लिमिटेड हो जाता है ना, वहां दुख है। इसको मैं 3 साल पहले मतलब मैंने उसको मदद की थी, फिर मुझे, मैं उसके पास ही जाऊंगी मदद मांगने के लिए, क्योंकि वो अधिकार महसूस करती हूं कि मैंने उसको मदद की थी ना, अभी उसका टर्न है मेरी मदद करने की। वो अधिकार समझ करके मैं उसके पास जाती हूं मदद मांगने के लिए, लेकिन किसी भी कारण से उससे मदद नहीं मिलती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखा, मैंने उसको इतना मदद की थी, लोगों का सुना था मैंने, सब कुछ करके फिर भी मैंने उसको आउट ऑफ द वे जाकर के ये कहता, बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। फिर गुस्सा आने के बाद क्या सोचती हूं मैं, लोगों, दुनिया में सभी लोग ऐसे हैं, किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, सभी स्वार्थी हैं, किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। लाइफ के लिए एक एक रूल बना दिया मैंने अपने लाइफ के लिए, किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। ये राइट है रॉन्ग है? एक बार बैड एक्सपीरियंस के कारण से मैंने अपने लाइफ का रूल ही चेंज कर दिया, रॉन्ग है वो। फिर किसकी गलती है? किसकी गलती है? अपनी गलती है। यहां अगर दूसरे तरीके से अगर देखते हैं, मदद किया ठीक है, लेकिन ये भावना रख करके मदद करे कि मुझे कहीं ना कभी जब भी जरूरत पड़ेगी मुझे मदद जरूर मिलेगी, लेकिन इससे नहीं, किसी और से मिलेगी जरूर। अगर ये विश्वास है ना, तो हम खुले दिल से एक्सपेक्टेशन रखे बिना हम मदद कर सकते हैं। ये क्या एक्सपेक्टेशन तो है एक तरीके से मुझे मिलेगा, लेकिन क्या पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इसी व्यक्ति से मुझे मिलेगा, वो एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो कर्म कभी पीछे छोड़ता नहीं है, राइट। जो मैं जो कर्म करती हूँ वो लौट कर वापस मुझे मिलना ही है। अगर मैंने किसी को सुख दिया, मैंने इस व्यक्ति को सुख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इसी व्यक्ति से मुझे सुख मिलेगा, नहीं, मुझे कहीं ना कहीं से सुख मिलेगा जरूर, है ना। जब ये समझ में आ गया तो फिर हम हमेशा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है ना मुझे मिलेगा जरूर, एक्सपेक्टेशन है, ह्यूमन टेंडेंसी है ये। एक्सपेक्टेशन के बिना हम करते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपैंड करने की जरूरत है। जो मैं दूंगी वो वापस मिलेगा। दान पुण्य भी क्यों करते हैं लोग, अच्छा हो जाए लाइफ में, अच्छा हो जाए, सुख क्यों देते हैं, अच्छा हो जाए, तो है ना। तो इस भावना को रख करके जब हम मदद करने लगते हैं तो वो मदद मिलता जाएगा। तो ये है संयोग की शक्ति, है ना। संयोग देते चले तभी हम सुखमय संसार देते करते कर निर्माण कर सकते। तो परमात्मा का भी ये एक टास्क है, एक कर्म है, ये है लक्ष्य है। परमात्मा का कार्य क्या है, जो परिवर्तन हो रहा है, कलयुग को सत्युग बनाना, मनुष्यों को देवी देवता बनाना, एक टास्क है उनका, विश्व परिवर्तन का ये जो कार्य हो रहा है उसमें सहयोग कैसे देंगे, सहयोग कैसे देंगे। कहते हैं ना, गोवर्धन पर्वत को गोप गोपियां मिलकर के उठाई, तो फिर एक अंगुली का सहयोग चाहिए परमात्मा को। कैसे देंगे, कौन से अंगुली है, एक अंगुली का सहयोग कौन सा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। विश्व परिवर्तन की जवाबदारी उसकी है, आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, कैसे हम सहयोग देंगे परमात्मा को, खुद को परिवर्तन करके। अगर मैं परिवर्तन हो जाऊं, मैं सर्व गुणों से संपन्न हो जाऊं, मैं सभी अपने वीकनेसेस को, कमी कमजोरियों को निकाल दूं, मैं शक्तिशाली बन जाऊं, तो फिर मेरे से अनेकों को प्रेरणा मिलती जाएगी ना। तो यही सहयोग परमात्मा को आप सभी से चाहिए। देने के लिए तैयार है, हाँ? आज जाने का दिन है, कल जाने का दिन है ना। तो जाने से पहले यह दृढ़ संकल्प करके जाना कि ये प्रॉमिस करके जाना यहाँ से कि स्व परिवर्तन को हम जरूर करेंगे, खुद को परिवर्तन करेंगे, खुद को पॉजिटिविटी से भरेंगे, खुद के अंदर जो नेगेटिविटी है उसको हम जरूर निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ तीन दिन चार दिन रहे तो इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने सुनी, तो आत्मा तो भरपूर हो गई है, आत्मा की शक्ति जो चार्ज है फुल 100% हो गया है, आपकी जो बैटरी का चार्ज 100% हो गया है, राइट। तो वापस बॉम्बे जाएंगे तो 100% रहेगा, 100% रहेगा, डिस्चार्ज होता जाएगा। जैसे जैसे कर्म करना शुरू करेंगे, यूज करना शुरू करेंगे बॉडी को, मन को, बुद्धि को यूज करना शुरू करेंगे, तो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो फिर से रिचार्ज कैसे करेंगे, फिर से यहाँ आएंगे, प्रैक्टिकल नहीं है, रोज रोज नहीं आ सकते यहाँ, प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रैक्टिकल क्या है? हाँ, जो सुना है उसको तो वो करना ही है, लेकिन रोज कुछ ना कुछ अच्छी बातों को सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, है ना। तो वो प्रैक्टिकल हो सकता है वहां जो लोकल आपका कॉल सेंटर है, वो रोज आप विजिट कर सकते हैं, रोज विजिट कर सकते हैं, जहां चाह है वहां राह है। इस कहावत के बारे में सभी जानते हैं, राइट। जहां चाह है वहां राह है। 24 आवर्स को में से थोड़ा सा आधा घंटा भी आप निकाल करके, भले आप घर में मेडिटेशन करें, लेकिन घर में बैठ के मेडिटेशन करें और यहां बैठ के जब आप मेडिटेशन करते हैं उसमें फर्क है, पर रात दिन का फर्क है, क्योंकि यहां ऑलरेडी वो एनर्जी डेवलप्ड है। तो ऐसे ही यहां अगर नहीं आ सकते तो हमारे लोकल सेंटर वो भी चार्ज है, क्योंकि वहां भी लोग रोज मेडिटेशन करते हैं, तो वहां तो जा सकते हैं। हर रोज ये आदत डालिए, हर रोज एटलीस्ट आधा घंटा आप सेंटर पर आपका पैर पड़ना चाहिए, पड़ेंगे तो फिर इजी हो जाएगा आपके स्व परिवर्तन करना, आपको बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो फिर आप स्ट्रगल करते रहे, वो नहीं होता, गुस्सा कम नहीं होता, ये झंझट, ये तो आप लड़ते रहेंगे अंदर, वो ये करते रहेंगे। लेकिन इजी वे है कि हर रोज एटलीस्ट थोड़ा मेडिटेशन करना और मुरली जो हम कहते हैं वो सुनना, वो करेंगे तो सारा दिन आपका जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रहता है। और साल में एक बार यहाँ आ जाना, ठीक है, फिर यहाँ पूरी तरह जो कहते हैं ना, फुल चार्ज तो है, लेकिन वो क्या कहते हैं, वॉश को क्या कहते हैं, ओवरऑयल हो जाता है ना, एक सर्विसिंग हो जाता है। यहाँ आते हैं साल में एक बार, सर्विसिंग हो जाता है, तो वहां बैठ करके फिर आप करते रहना, है ना। तो ये आदत डालना यहाँ से, ठीक है। ओम शांति।
तो हमने देखा कि मेडिटेशन अपने आप में एक ऐसी विधा है जिससे हम ना केवल अपने अंदर समस्त गुणों का, सात्विक गुणों का संग्रहण करते हैं, बल्कि ये जो पावर्स बताई हैं देवी जी ने, उनको अपने आप में कैसे समाहित करते हैं और उनको बढ़ाने का, उनको मजबूत करने का, शक्तिशाली बनाने का जो तरीका बताया देवी जी ने, कि डेली हम ज्ञान का श्रवण करें और सुबेरे अमृत वेला में मेडिटेशन करें, क्योंकि उसमें कोई ट्रैफिक नहीं होती है। सो दैट इज अ टाइम व्हेन वी कैन मेडिटेट विद सत्य का संग, सत्य का संग, सत्य माने भगवान का संग करेंगे तो हमारे अंदर उन गुणों का और शक्तियों का प्रवाह अपने आप ही होता रहेगा। और दीदी जी ने आज बताया कि हम कैसे इन शक्तियों के बारे में, कि पहली पावर टू विदड्रॉ, जिसमें उन्होंने बताया कि हमें न केवल मेडिटेशन करने के लिए आत्मिक स्थिति में स्थित होना चाहिए, बल्कि कोई भी कर्म करने के लिए आत्मिक स्थिति में होकर, स्थित होकर अगर हम कर्म करेंगे तो ये शक्ति हमें बहुत मदद करती है। दूसरा उन्होंने बताया पावर टू पैकअप, उसमें बताया है कि जैसे बहुत अच्छी बात बताई है कि हम किसी भी निगेटिव व्यक्ति को अगर याद करते हैं तो मानो अपनी एनर्जी हम उसकी निगेटिविटी को और दे देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए उसके बारे में नहीं सोचना है और उसको भी शुभ भावना से दुआ देनी है। फिर बताया सहनशीलता के बारे में, पावर टू टॉलरेट, उसमें हमें क्या करना चाहिए कि प्यार को जागृत करने की जरूरत है सभी के लिए, हमारे हृदय में सभी के लिए, जो हमारा नुकसान भी कर रहा है उसको भी रहम की दृष्टि से देखें, उसके लिए भी प्यार को जागृत करें। और समाने की शक्ति, तो इसमें क्या है कि हमारे अंदर हमें पावर ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी तो हम उससे समा सकेंगे। हमें डस्टबिन बनना है? नहीं, हमें डस्टबिन नहीं बनना है, हमें एक हीरा समान अपने आप को बनाना है। फिर पावर टू डिस्क्रिमिनेट, जिसमें इन्होंने तीन लेवल्स बताए कि पहले हमने इन्फॉर्मेशन हमको मिली और उसको हमने नॉलेज कैसे बनाया, मनन करके, चिंतन करके, उसको समझ करके नॉलेज बनाया और उसके बाद मेडिटेशन में उसको अनुभव किया और वो विजडम बनी। तो विजडम के साथ हम कोई भी कर्म करते हैं तो सफलता निश्चित है। उसके पश्चात आपने बताया पावर टू डिसाइड, उसमें तीन बातें बताई, आंखें बंद, तराजू और तलवार। तो ये हमारे अंदर जो निर्णय लेने की शक्ति आती है वो सिर्फ मेडिटेशन अच्छी तरह करेंगे, ज्ञान का श्रवण जिसमें हमें मुरली में हर तरह के आंसर्स मिलते हैं हमारी समस्याओं के, तो हमारे अंदर ये पावर बहुत अच्छी तरह से डेवलप होती है। फिर पावर टू फेस, पावर टू फेस में हमें बताया दीदी ने कि हमें पॉजिटिविटी को आधार बनाकर परिस्थिति का सामना करना है जो कि बहुत आवश्यक है, और नफरत से कर्म नहीं करना चाहिए। जिनसे आपके विचार नहीं मिलते हैं, सामंजस्य नहीं है, तो उनसे नफरत ना करें। और अंत में आपने बताया पावर टू कोऑपरेट, उसमें दोनों चीजें हैं, सहयोग देना और लेना, और बिना एक्सपेक्टेशन के कर्म, जो कि श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि अगर हम निस्वार्थ भाव से बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी रिटर्न के कर्म करते हैं, कैसे, भगवान का साथी बनकर, उनको अपने हर कार्य में साथी बनाकर अगर उसे हम करते हैं तो हमारा पावर टू कोऑपरेशन ऑटोमेटिकली हमारे अंदर बढ़ता है। दीदी जी थैंक यू वेरी मच, इट वॉज अ वेरी लर्निंग क्लास, एंड ऑफ कोर्स दिस विल बिकम द बेस ऑफ अवर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ मेडिटेशन लेटर ऑन। हम लोग लौट करके इन्हीं विधाओं की और प्रैक्टिस करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे जीवन में सफलता हमारे कदम चूमे। थैंक यू वेरी मच।
ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद सुमन दीदी जी, आपने अपना समय देकर हमें आपके अनुभव से लाभान्वित किया।